उत्पत्ति अध्याय 23। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वो किर्यातर्बा में मर गई। ये कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। उत्पत्ति 23 का 1 और 2 पद। अब प्रमाणिक रूप से इब्राहिम अपने पशुओं के संग कहीं बहुत दूर था जब सारा की मृत्यु हुई और वो उसके पास नहीं था, जो कि निश्चय ही एक दुख की बात है। वो विलाप करने आया, सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हितियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूं, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। उत्पत्ति 23:3 और 4 पर। इस समय तक इब्राहिम के पास उस देश में कोई भूमि नहीं थी। वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी और यात्री था, ये जानते हुए कि किसी दिन परमेश्वर उसे और उसके वंशजों को वो देश देगा। हितियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेंगे कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने ना पाए। उत्पत्ति 23:5 और 6 पद। इसलिए इब्राहिम ने वहां के मनुष्यों को इकट्ठा करके कहा कि मुझे अपने मृतक को गाड़ने के लिए भूमि चाहिए, और उन्होंने कहा, हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे ले ले, और हम में से कोई तुझे ना रोकेगा। तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हितियों के सन्मुख, जो इस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहार के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वो अपने मैकपेले वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वो तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। उत्पत्ति 23:7-9 पद। और इस प्रकार वो वहां के लोगों के सामने एक स्थान विशेष खरीदने का प्रस्ताव रखता है कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो जाए। और एप्रोन तो हितियों के बीच वहां बैठा हुआ था। उत्पत्ति 23:10। वो वहां इकट्ठे हुए लोगों के बीच में था। सो जितने हिती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वो भूमि मैं तुझे देता हूं और उसमें जो गुफा है वो भी मैं तुझे देता हूं, अपने जाति भाइयों के सन्मुख मैं उसे तुझको दिया देता हूं, सो अपने मृतक को कब्र में रख। उत्पत्ति 23:10 और 11 पद। एक प्रकार से वो एक अत्यंत उद्धार प्रस्ताव रखता है जो कि उस सभ्यता में अनूठा है। दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जाता था, ठीक है, मैं इसे तुझे देता हूं, पर इब्राहिम के लिए इसे मुफ्त में ले लेना विनम्रता ना होगी। वो उनके लेन देन का एक ढंग होता था। जब वे सबके सामने कहते थे कि वैसे तो इसका दाम इतना है, पर आप इसे यूं ही ले लीजिए, भला आपसे क्या सौदा करना, आप तो बड़े आदमी हैं। अब देखिए, इस देने के पीछे उस भूमि का मूल्य भी बताया गया था। लोगों के सामने तो कहा, मैं इसे आपको देता हूं, पर क्या इब्राहिम उस भूमि को मूल्य चुकाए बिना ले सकता था? यदि ऐसा होता तो ना जाने क्या क्या हो जाता। और इसलिए तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की और उनके सुनते हुए एप्रोम से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वो मैं देना चाहता हूं। उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपा है, परंतु मेरे और तेरे बीच में ये क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। उत्पत्ति 23:12-15 पद। 400 शेकेल रुपा जो एप्रोन ने बताया वो उस भूमि की एक बहुत ऊंची कीमत है। वहां वे बहुत ऊंचे दाम से मोल भाव शुरू करते थे और फिर देखते हैं कि खरीदने वाला कितने तक में राजी हो जाता है। असल में भूमि का दाम तो 50-60% कम ही होगा, पर उसने इस विचार से 400 शेकेल कहा कि इब्राहिम मोल भाव तो करेगा ही। फिर वो परदेशी भी था, धनवान भी था। वे आज भी खरीद फरोकत इसी प्रकार किया करते हैं। यदि आज भी आप वहां जाएं तो यही बात पाएंगे। वहां क्या हमारे यहां भी मकान, भूमि एवं अन्य वस्तुओं का मोल भाव इसी प्रकार किया जाता है? सबसे पहले सबसे ऊंची कीमत, फिर धीरे धीरे कम होती जाना, फिर 40% मूल्य में आप खरीद लेते हैं। ये तो उनकी सभ्यता का एक भाग है। आप कहते हैं, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है, और जाने लगते हैं। तब वो कहेंगे, ठहरिए ठहरिए, आप क्या देंगे? और फिर आगे बढ़ जाना, फिर बुलाना और वापस आना, फिर उसका काम किया मूल्य सुनना, और अंत में आप वस्तु को आंक कर अपनी अंतिम बोली लगा देते हैं। बेचने वाला मन में सोचता है, लाभ तो हो ही रहा है, पर सामने बोलता है, कोई बात नहीं, आपकी बात रख लेते हैं, इसमें नहीं कमाया तो किसी और में कमा लेंगे। है ना मजेदार बार्गेन या सौदेबाजी? पर इब्राहिम के सामने परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। उसकी पत्नी के शव को गाड़ना था, कब्र के लिए भूमि चाहिए थी, पर मुफ्त में नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं लेना। इब्राहिम जानता तो था कि एप्रोन भूमि का दाम बहुत अधिक बता रहा था, पर उसने मोल तोल करना ठीक न समझा। वैसे भी वो शोकित था, यात्री और परदेशी था, हालांकि उसे हे मेरे प्रभु कहकर बोला जाता था। वो उनके बीच एक इज्जतदार प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, और यदि वो चाहता तो सबके सामने एप्रोन से कह सकता था कि ये कैसा दाम है। पर वो एक आशीषित जन था, उसने कभी किसी का बुरा ना चाहा और ना बुरा किया था। परमेश्वर के भय में चलने वाले जन की पत्नी की दफन करने का प्रश्न इस समय उसके मनस पटल पर घूम रहा था। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि ना जाने वो ये भूमि दे या ना दे, हितियों का इलाका। इसलिए जब उसने लोगों के सुनते एप्रोन को 400 शेकेल रुपा कहते सुना, तो उसने अपने दासों से कहा, ठीक है, 400 शेकेल रुपा जो उन दिनों व्यापारियों में चलता था, तौल दो। और तौल कर सबके सामने एप्रोन को दे दिए कि मैकपेले वाली गुफा, उसके वृक्ष के आसपास की भूमि हमेशा के लिए उसके अधिकार में आ जाए। हो सकता है कि वहां बैठे लोगों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई होगी। कई तो निराश हुए, कई ने सोचा इब्राहिम ने दाम कम क्यों नहीं करवाया, तो कई और ने सोचा एप्रोन को अच्छी खासी रकम हाथ लग गई। दूसरी ओर इब्राहिम अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण शोकित था, वो मोल भाव में नहीं पड़ना चाहता था। सबसे बड़ा सवाल सारा को दफनाने के लिए निज भूमि को पाना था। हेब्रोन के और ममरे के सामने मकपेले की गुफा में सारा को मिट्टी दी गई। अब जब प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में स्तिफनुस के भाषण में शकेम में कब्रिस्तान के लिए भूमि खरीदे जाने का वर्णन है, जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर खरीदा था, ये भूमि हामोर से खरीदी गई, जहां यूसुफ के बाप दादे दफन करने के लिए ले जाए गए थे। आप सोचेंगे कि स्तिफनुस को इतिहास ठीक से नहीं मालूम था कि इब्राहिम ने हेब्रोन के पास कब्रिस्तान के लिए भूमि खरीदी थी। वास्तव में वो सही कहता है। इब्राहिम ने पहले हामोर से शेकेम में भूमि खरीदी थी और अब सारा के दफनाए जाने के लिए एप्रोन से हेब्रोन के पास मकपेले वाली गुफा सहित भूमि खरीदी थी। इसमें संदेह जैसे कुछ भी नहीं है। इब्राहिम परमेश्वर की अगुवाई में यात्रा में आगे बढ़ते जा रहा था और जहां आवश्यकता पड़ी उसने भूमि खरीदी। अगले अध्ययन में हम इसहाक के लिए दुल्हन लाए जाने का वर्णन को देखेंगे, जो बाइबल के वृत्तांतों में एक अति सुंदर वृत्तांत है। इब्राहिम का दास दूर देश जाकर अपने स्वामी के पुत्र के लिए दुल्हन लाता है और आज हम इसकी तुलना पवित्र आत्मा से करते हैं कि किस प्रकार से वो संसार में से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए दुल्हन को तैयार कर रहा है।